वही वह ब्रह्म होगा जो रूप धारण करके आया है और वही फिर महाशक्ति का वर्णन करेगा। जब महाशक्ति मानव तन धारण करके आ गई हैं, तब ब्रह्म भी मानव तन धारण करके आ गया होगा, इस प्रकार का अनुमान करके उन्होंने वह घोषणा की। लक्ष्मण जी का तात्पर्य वही है, तात्पर्य वही है कि जब ये जानते हैं महाराज श्री जनक, उनके यहाँ साक्षात शक्ति हैं, महाशक्ति आई हैं, और ब्रह्म ही इस महाशक्ति का वर्णन करेगा। और दूसरे, जब महाराज श्री जनक ने हम लोगों को देखा तो प्रभु को देखते ही उन्होंने पहचान लिया, जिनके ज्ञान नेत्र इतने पैने कि पहले ही दर्शन में जो कहते हैं क्या वही यह ब्रह्म है जिसको वेद नेति नेति कह करके गाते हैं। और इसके बाद भी महाराज श्री जनक यहाँ पर कहें कि मेरी यह कन्या कुमारी ही बनी रहेगी, यह तो बहुत विचित्र बात है, यह तो अनर्थक बात है, और इसीलिए उन्हें क्रोध आता है। अब क्रोध आकर के वे वह बात कहते हैं, और उन्होंने क्रोध में आकर के जो बात कही वह बात चिकित्सा कर रही है, जनक जी की चिकित्सा कर रही है। पहले तो ऐसा लगता है कि यह कैसी बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी, बड़ी अटपटी बात, धनुष को तोड़ने की बात, क्या वे नहीं जानते कि महाराज श्री जनक कह चुके हैं जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, और यहाँ पर श्री राम बैठे हैं, और उनके बैठे हुए ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं धनुष को तोड़ करके फेंक दे सकता हूँ, यह कैसी विचित्र बात है। इसका मतलब क्या वे सीता जी को चाहते हैं स्वयं अपने लिए, और जानते हैं लक्ष्मण जी कल ही तो पुष्प वाटिका में उन्होंने प्रभु को अनुराग संपन्न देखा था, विरागी ब्रह्म अनुरागी बना था। जनक की पुष्प वाटिका में सीता जी को देख करके उन्होंने सीता जी का भी अनुराग देखा और प्रभु का भी अनुराग सीता जी के प्रति देखा, और केवल देखा ही नहीं, प्रभु ने कहा भी, और वह जो कहा उसे लक्ष्मण ने सुना भी। कहा था प्रभु ने लक्ष्मण से बाद में कि देखो सहज विराग रूप यह तो जो है मेरा, मेरे भीतर, मैं तो कभी किसी प्रकार, मेरी दृष्टि कभी नहीं जाती कुपथ में, परंतु लक्ष्मण मालूम नहीं आज क्या हो रहा है, यह जो जनक नंदिनी है, जनक नंदिनी की ओर मेरा मन चला जा रहा है, यह बात भी प्रभु ने लक्ष्मण जी से कही थी। जानते हैं दोनों का परस्पर अनुराग, और इसके बावजूद लक्ष्मण जी ऐसा कहें, कुछ लोग इस पर छीटा कशी कर सकते हैं कि ये देखो लक्ष्मण जी कितने अमर्यादित हैं, बोलते हैं तो उनको भान नहीं रहता है, पर वास्तविकता भिन्न है। लक्ष्मण जी यह जानते हैं कि इस धनुष के टूटने के साथ प्रभु और सीता जी के विवाह का कोई संबंध नहीं है, ब्रह्म और शक्ति का जो मिलन है वह चिरकालीन, वह शाश्वत, वह क्या धनुष के टूटने न टूटने पर अवलंबित है, वह क्या जनक जी विवाह करें या न करें उस पर अवलंबित है। जनक जी इस सत्य को जानते हुए भी अनजाना कैसे कर रहे हैं, यही उनके हृदय का दुख, और वह दुख वाणी में निकल पड़ता है। इसीलिए वे कहते हैं वहां पर, वे कहते हैं कि ये जनक ने कही जनक जस अनुचित वाणी, यह जो अनुचित वाणी कह रहे हैं तो वे इस अनुचित वाणी को किसी प्रकार सह नहीं सकते हैं। क्या तात्पर्य है जनक लक्ष्मण जी का? यही तात्पर्य कि ब्रह्म और शक्ति अभेद, उनका मिलन शाश्वत, और इसीलिए वह धनुष के टूटने पर न टूटने पर निर्भर नहीं है, और इसलिए कहा कि ठीक है धनुष को टूटना है वह तो टूट जाएगा, पर मिलन तो इन दोनों का होना चाहिए। उनकी दृष्टि में तो विवाह संपन्न हो गया पुष्प वाटिका में, कल ही हो गया, यह लक्ष्मण जी की धारणा है। अगर पूछा जाए अयोध्या वासियों से, महाराज श्री दशरथ से, भगवान श्री राम का विवाह सीता जी के साथ कब हुआ, तो वे कहेंगे अघन शुक्ल पंचमी को, हिम ऋतु अघन मास सुहावा, संकेत है रामचरितमानस में, तो वे कहेंगे कि अघन मास के यह जो अघन शुक्ला पंचमी को उनका विवाह संपन्न हो गया। विश्वामित्र जी से कोई पूछे कि विवाह कब संपन्न हुआ, तो वे कहेंगे टूटत ही धनु भयो विवाह, धनुष टूटा और दोनों का विवाह हो गया। और लक्ष्मण जी से कोई पूछे कि प्रभु का सीता जी के साथ विवाह कब हो गया, तो कहेंगे कल पुष्प वाटिका में हो गया, वहां पर उन्होंने सजा दिया, तब तो वे पुष्प लेने के लिए गए थे चयन करने के लिए, तो पुष्प लेने के लिए गए थे पूजा के फूल, इसलिए उन्होंने मुकुट धारण नहीं किया था, पर हम देखते हैं कि मुकुट पहना दिया लक्ष्मण जी ने स्वयं। जब देखा प्रभु के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ है, तो वे सजा देते हैं लता मंडप में, प्रभु को मुकुट पहना देते हैं, मयूर पंख पहना देते हैं, मोर पक्षधारी कर देते हैं, जो विरागी ब्रह्म है उसे अनुरागी बना देते हैं, जो निष्पक्ष है उसे पक्षधर बना देते हैं। ऐसे ये लक्ष्मण जी हैं जो वह कार्य साधित करते हैं पुष्प वाटिका में, उस लता में, लता की ओट में। तो तात्पर्य है, लक्ष्मण जी जानते हैं कि इनका विवाह तो वहीं पर हो गया है, यह तो ब्रह्म और शक्ति का मिलन है, और राजा जनक ऐसी अनुचित बात कहेंगे? तो एक दृष्टि से यह उसका उत्तर है। और दूसरी बात तो ठीक है, अगर लक्ष्मण जी की बात अनुचित होती तो सबसे अधिक खराब तो सीता जी को लगना था या श्री राम को लगना था। श्री राम को खराब लगना था कि यह कैसी अनुचित बात लक्ष्मण कह रहा है, जब उसने जान लिया मेरे अनुराग को, सीता जी के प्रति अनुराग को, कल मैंने जो व्यक्त किया था यह जानते हुए भी लक्ष्मण ऐसी अनुचित बात कह रहा है कि मैं धनुष को तोड़ दूं, यह तो बात ठीक नहीं दिखाई देती। पर प्रभु, क्या लक्ष्मण जी की बात से असंतुष्ट होते हैं? हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि दोनों गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि मुदित भय पुनि पुनि पुनकाहि। श्री राम का क्या, तो उन पर प्रतिक्रिया क्या थी कि विश्वामित्र मुनि भी, प्रभु श्री राम भी, और उनके साथ जो मुनिगण आए थे वे भी, वे मुदित भय लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के अत्यंत मुदित हो जाते हैं। पुनि पुनि पुलकाहि, और उनको पुलक होने लगती है, प्रभु को पुलक होने लगती है। तो लक्ष्मण जी की बात यदि अनुचित होती तो प्रभु जी में यह पुलक कहाँ से पैदा होती? प्रभु पुलकित होते हैं। और इसी प्रकार सीता जी जब सुनती हैं तो उन्हें खराब लगना था, यह कैसी बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अनुचित बात कह रहे हैं। नहीं, वे भी सी ही हर्षि जनक सकुचाने, जब इस प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं तो अत्यंत हर्षित होती हैं सीता जी, जनक जी संकुचित होते हैं। तात्पर्य यह है कि जहां पर हम क्षोभ होगा ऐसा सोचें वहां पर हर्ष होता है। इसका मतलब यह, जनक जी की चिकित्सा की जा रही है और लक्ष्मण जी बड़ी सफल चिकित्सा जनक जी की करते हैं, यह हम देखते हैं। और इसका मतलब क्या है, अंत में क्या हुआ, जब चले गए परशुराम जी वहां से विदा लेकर के, तब आकर के खड़े होते हैं जनक जी विश्वामित्र जी के पास। वहां पर दोनों बालक खड़े हैं, प्रभु श्री राम खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, और लक्ष्मण जी को सुनाते हुए कहते हैं मोहि कृतकृत्य कीन्हि दोहु भाई। अब कैसे कहें कि लक्ष्मण जी ने मुझे कृतकृत्य किया, कहते दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया है, यह जनक जी के उद्गार हैं। और देखते हैं वे लक्ष्मण जी की तरफ, क्योंकि उन्हें बहुत खराब लगा, ये देखो मैंने ही तो कहा था कि मस्त करहु अनुचित फल नाही, ये क्या आप इतनी बात कह रहे हैं, चुप रहिए, ये अच्छा नहीं है, यह जनक जी ने ही कहा था। पर अभी वे देखते हैं, अब जो प्रकाश आया उस प्रकाश में देखते हैं कि उनकी चिकित्सा हो गई, उनके भीतर में जो अंधकार था उस धनुष को लेकर के वह अंधकार निकलता है। जनक जी जो यह मानते थे कि धनुष के टूटने के साथ सीता जी के विवाह का संबंध है, वह उनकी धारणा निकल जाती है। और तब देखते हैं कि ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जो जनक जी स्वयं जानते थे, पर उस पर आवरण था अज्ञान का, वह अज्ञान का आवरण निकल गया और कृतकृत्यता उनके जीवन में आई, और उस कृतकृत्यता को प्रकट करने के लिए वे एक कार्य करते हैं। आप जानते हैं कौन सा कार्य करते हैं, अपनी स्वयं की कन्या उर्मिला का दान वे करते हैं लक्ष्मण जी को, विवाह देते हैं लक्ष्मण जी के साथ। यह कृतकृत्यता का प्रकाशन है जो जनक जी ने अपने जीवन के माध्यम से किया। चिकित्सा हो गई, यह दूसरी चिकित्सा। तीसरी चिकित्सा ले, ये है परशुराम जी। परशुराम जी की भी चिकित्सा लक्ष्मण जी करते हैं, कैसे करते हैं वह आप जानते हैं। आए हैं, क्रोध कितना है परशुराम जी के भीतर में, लक्ष्मण जी में भी क्रोध है, पर दोनों के क्रोध का अंतर आपके समक्ष हमने रखा। परशुराम जी को आवेशावतार कहा गया है, वे भी भगवान के अवतार माने जाते हैं, पर उनको कहा गया है आवेशावतार। उनको आवेश आता है, आवेश में वे कुछ कार्य करते हैं, आवेश जब चला जाता है तो सामान्य मुनि हो जाते हैं। तो ये भी हैं परशुराम, और भगवान श्री राम भी आए हैं, ये दोनों ही राम हैं। और विलक्षण बात यह है कि राम और राम का संघर्ष होता है, राम और रावण का संघर्ष तो बाद में होता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं राम और राम का संघर्ष पहले हो गया। क्यों हो गया? ऐसा हो गया, परशुराम तो आए थे समाज के लिए दवा बन करके, पर कभी कभी दवा भी रोग बन जाती है, ये आप जानते हैं। ये ठीक है, मनुष्य एक दवा देता है रोग को ठीक करने के लिए, पर कभी कभी यह दवा भी रोग बन जाया करती है। जैसे औषध हमने रोग के निवारण के लिए दी, अब औषध में अधिक उष्णता हो, जैसे रोग को दूर करने के लिए जितनी उष्णता की आवश्यकता हो उससे अधिक उष्णता हो, अधिक गर्मी हो, तो वहां पर उसके साथ साथ अनुपान दिया जाता है। चिकित्सक अनुपान देते हैं, वैद्य अनुपान देते हैं, जिससे जो अधिक उष्णता है उसका शमन हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि दवा बनकर के तो परशुराम जी आए, पर अंत में वे स्वयं एक रोग बन जाते हैं, समाज के लिए रोग, उनका आवेश ही रोग बन जाता है। वे पाप को खत्म करने के लिए तो पुण्य बनकर के आए, पाप को खत्म तो किया पर पुण्य अपने आप में एक रोग बन गया। गोस्वामी जी इसका सार्थक संकेत देते हैं। हम पढ़ते हैं गीतावली में, पढ़ते हैं दोहावली में, अपने विनय पत्रिका में पढ़ते हैं, जहां पर वे कहते हैं, करता हूं सुकृतन पाप सिराही, रकत बीज जिम बाढ़त जाही। सुकृत करने से पाप खत्म नहीं होते, क्या होता है तो कहते हैं कि सुकृत करने से, अच्छे कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से पाप खत्म नहीं होते, तो क्या होता है, पाप बढ़ते हैं। उसी प्रकार बढ़ते हैं जैसे रक्त बीज को मारने से रक्त बीज बढ़ता था, यह बहुत उल्टी बात है। हम तो यही जानते हैं कि पुण्य करने से पाप खत्म होता है, और गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य करने से पाप खत्म नहीं होता बल्कि पाप और भी बढ़ता है, जैसे रक्त बीज को मारने से रक्त बीज बढ़ता था। यह उल्टी बात लगती है, पर गोस्वामी जी का तात्पर्य बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि जब पुण्य के साथ पुण्याभिमान लग जाता है तो यह पुण्य भी पाप का ही पर्याय बन जाता है, कि मैं पुण्य करूं और उसमें अहंकार घुस जाए तब तो वह अहंकार सारे पुण्य को दूषित कर देता है, दुर्गुण में परिवर्तित कर देता है। जैसे जीवन है नारद जी का, वह नारद मोह प्रसंग कई बार आपके समक्ष रखा गया है, आप जानते हैं उन्होंने काम को जीता, क्रोध को भी जीत लिया, छोटा सा एक अहंकार का उदय उनके मन में हुआ कि मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, और यह अहंकार उनको ले डूबता है। उनके जीवन में कितना काम आया, कितना क्रोध आया, यह तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि परशुराम पुण्य के द्वारा पाप का विनाश तो करते हैं पर उनका पुण्य स्वयं अपने आप में एक रोग बन जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए फिर भगवान को आना पड़ता है, नहीं तो आने की आवश्यकता थी नहीं। वे लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आते हैं काल तत्व को, और चिकित्सा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं परशुराम जी की, अन्यथा रावण को मारने के लिए प्रभु को आने की आवश्यकता थी ही नहीं। सरल गणित का त्रैराशिक क्रम है, आप जानते हैं कि सहस्रार्जुन ने रावण को हरा दिया और परशुराम जी सहस्रबाहु को हराते हैं, तो बहुत सरल गणित क्रम है जो कहता है कि वे परशुराम जी चाहते तो वे रावण को हरा सकते थे। हम पढ़ते हैं कि नर्मदा के जल में रावण जाकर के प्रविष्ट होकर के मंडला के पास, वह वहां पर सहस्र धारा है मंडला के पास नर्मदा जी में, तो वह वहां पर पूजा कर रहा था, शिव जी की पूजा कर रहा था, अचानक नदी में बाढ़ आई और उसकी पूजा बह गई, यह कथा आती है। रावण को बड़ा क्रोध आया, कौन दुष्ट है, क्या हो गया, मेरी पूजा कैसे बह गई, नदी में अचानक बाढ़ कैसे आ गई। वह निकलता है और निकल करके वह नदी के उद्गम की ओर जाता है तो उसने देखा कि सहस्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, कभी सारी भुजाएं फैला देता है, पानी को रोक लेता है, और जब भुजाओं को समेटता है तो जल बाढ़ के रूप में जोरों से बहता है। तो ऐसी ही एक घटना में उसकी पूजा बह गई, ललकारा, सहस्रबाहु बाहर आया, दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, रावण को परास्त कर देता है सहस्रबाहु, और सहस्रबाहु स्वयं पराजित होता है परशुराम जी के द्वारा। इसलिए परशुराम बहुत स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से रावण को हरा सकते हैं, और रावण को हराने के लिए प्रभु को आने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी प्रभु आए। क्यों आए जानते हैं, आवेश आता है, आवेश आने से ये फिर समझ नहीं पाते हैं परशुराम क्या भला है क्या बुरा है। नदी का जल कितना मंगलमय होता है, कल्याणकारी होता है, प्राणप्रद होता है, यह हम सभी जानते हैं। पर उसी नदी में बाढ़ आ जाए तो जल की तांडव लीला होती है, वह विनाश का कारण बनता है। तो ठीक इसी प्रकार परशुराम जी के जीवन में सामान्यतया जब सब कुछ चलता है तब तो वह जीवन मंगलदायी है, उनका चरित्र जीवनदायी है, पर जब आवेश की बात आती है तो फिर वही अकल्याण का कारण बनता है। इसीलिए लिखते हैं गोस्वामी जी, घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबानी। ये जो रिसा जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, आवेश में आने के कारण उनको कुछ पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, तो यह आवेश उनके लिए और समाज के लिए खतरनाक है। उसमें घाट बनकर के प्रभु आते हैं, इसलिए प्रभु को आने की आवश्यकता हुई। और यह जो घाट बनाते हैं, कौन है शिल्पी, इंजीनियर कौन है, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी इंजीनियर बन करके आते हैं और प्रभु रूपी घाट परशुराम जी के जीवन चरित्र पर बनता है, जिससे वह जो जल है वह कल्याणकारी हो। और हम देखते हैं अंत में वही बात हुई, तो ये परशुराम जी आए हैं, ऐसे परशुराम जी आए हैं और आकर के देखते हैं, वे आए धनुष यज्ञ में, पूछते हैं राजा जनक से, पूछ रहे हैं कि राजा यह सब क्या हो रहा है। माने लिखते हैं गोस्वामी जी, पूछत जान अजान जिम, यह पूछते हैं अजान जिम, जानते हैं सब कुछ, आकर के उन्होंने पूछा, पूछत जानी अजान जिमी और व्यापक को शरीर, उनके सारे शरीर का ऐसा जिज्ञा मैंने की थी। वह धनुष, उसके बाद उनकी वाणी जो निकलती है परशुराम जी की, वह कितनी अग्नि भरी वाणी है। वे कहते हैं कि बता तो सही, अभी मैं सब कुछ सारा यह ब्रह्मांड फिर से मैं नष्ट कर दूं। अति डर उतरु दे तो निपनाई, अत्यंत डर हो गया राजा जनक को। श्री राम वहीं खड़े हैं, फरसा चमका रहे हैं परशुराम, ऐसा लगता है कि कहीं पता चल गया कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है तो फरसा न चल जाए, यह भी बहुत भारी डर उनके भीतर में विद्यमान है। उस समय फिर प्रभु देखते हैं कि क्या किया जाए, स्वयं फिर अत्यंत नम्र वाणी में कहते हैं, नाथ संभु धनु भंजनी हारा कोई क्यों एक दास तुम्हारा। प्रभु कहते हैं, नाथ शंभु धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। कितनी नम्र वाणी और कितनी अद्भुत मनोवैज्ञानिकता से भरी वाणी, प्रभु कहते हैं आपका कोई एक दास होगा। परशुराम समझ नहीं पाते इस वाणी को और एकदम उनके मुख से तो ऐसे अपशब्द निकलते हैं, इतनी कटु वाणी निकलती है कि जिसको कोई सुन न सके, डर रहे हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। राजा जनक तो चुपचाप खड़े हैं, परशुराम यह नहीं समझ पाते कि इतनी नम्र वाणी कहने वाला या दिखने वाला राजकुमार यही धनुष का तोड़ने वाला होगा। क्योंकि कल्पना की थी परशुराम ने कि जिसने धनुष को तोड़ा होगा वह सीना तान करके खड़ा होगा, स्वाभाविक है कि जो इतना बड़ा कार्य कर दे बहादुरी का उसका सीना तना होगा। और इसीलिए वे आते हैं, आकर के देखते हैं कि किसी का सीना तना हुआ है क्या, किसी का सीना तना हुआ नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, पहले मेरे आने से पहले वह सीना तान के खड़ा होगा, पर जब उसने सुन लिया कि मैं आ रहा हूं तो वह थर थर कांप रहा होगा। तो वे देखने लगे कि कोई थर थर कांप रहा है क्या, उन्होंने देखा कि सभी थर थर कांप रहे हैं। अब कौन कैसे विचार करे कि किसने तोड़ा, और यह जो सामान्य नम्र वाणी में कहता है राजकुमार कि नाथ संबदन भंजनी हारा कोई केवल एक दास तुम्हारा, और यही इसका न तो सीना तना हुआ है और न यह थर थर कांप रहा है, यही विलक्षणता है। माने प्रभु ऐसे खड़े हैं, हर्षिन हृदय विषाद कछु बोले श्री रघुवीर, यही विलक्षणता है। जिस समय विश्वामित्र ने कहा कि उठो राम बंजहु शिव चापा मेटहु तात जनक परितापा, वे गुरु को प्रणाम करते हैं, ना हर्ष लाते हैं ना विषाद लाते हैं। धनुष तोड़ने के समय भी न तो हर्ष न विषाद, और यहाँ पर भी न हर्ष न विषाद, क्या विलक्षणता है। माने यही श्री राम की विलक्षणता है कि जिस समय धनुष तोड़ने जाएंगे तब भी नहीं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देखी सब ठाढ़े। यही उनकी कुशलता है कि वे कब धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, खींचते हैं, तोड़ते हैं और नीचे डाल देते हैं, कोई नहीं देख पाता। केवल इतना ही देखा लोगों ने कि श्री राम वहां पर गए, बस इतना देखा। और उसके बाद वे बहुत जोरों से प्रचंड ध्वनि सुनते हैं, बिजली कौंध जाती है। और उसके बाद जब वे देखते हैं तो श्री राम वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। केवल अंतर इतना दिखाई देता है कि पहले धनुष साबूत था, अब धनुष दो टुकड़ों में बटा हुआ टूटा हुआ पड़ा है। उससे अनुमान लगाते हैं कि इसी राजकुमार ने ही तोड़ा होगा। पर श्री राम जो धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तोड़ते हैं, कोई नहीं देख पाता। यही विलक्षण, जिसको हम कहेंगे कर्मयोग का भाव, कि कर्म हो जाए, कर्ता दिखाई ना दे। कि हमारा उल्टा है, हमारा कर्तापन तो दिखाई देता है, कर्म नहीं दिखाई देता। मानो हम अपने को अधिक प्रकाशित करते हैं, कर्म उतना प्रकाशित नहीं होता। श्री राम है जिनका कर्म ही प्रकाशित होता है, कर्तापन प्रकाशित नहीं होता। तो हर्षन हृदय विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जब बोलते हैं यहाँ पर तो इतने रिसाए हुए मुनि हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो वहां पर भी हाथ जोड़ करके नम्र वाणी से कहते हैं, नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई केवल दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। समझ नहीं पाते हैं परशुराम भगवान श्री राम की बात को। और भगवान श्री राम तो ठीक ही कहते हैं कि कोई किसी ने धनुष तोड़ा होगा। तो कोई कोई कहते हैं यह क्या, यह भविष्य में उन्होंने, प्रभु ने यह बात की। ठीक ही बात है, प्रभु के लिए वह बात भविष्य की हो गई। जिस समय धनुष टूटा उस समय तोड़ने वाला कोई था, अब जब धनुष टूट गया तो धनुष तोड़ने वाला कहाँ रहा। जब तक धनुष टूटने का कार्य संपन्न नहीं हुआ, जब तक धनुष को तोड़ा जा रहा है, तब तक उसका तोड़ने वाला है। और जब धनुष टूट गया तो उसका तोड़ने वाला कहाँ है, वह तो कार्य संपन्न हो गया, तोड़ने वाला अब रहा ही नहीं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कोई एक आपका दास होगा जिसने धनुष को तोड़ा होगा। परंतु फिर भी परशुराम समझ नहीं पाते और एकदम प्रभु ऐसी नम्र वाणी कह रहे हैं, क्रोधित होकर के परशुराम कहते हैं, अरे देखो तुम लोगों में से जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह यहाँ आ जाए, न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार डालूंगा। यही उनका आवेश है, यही उनका रोग है कि एक ने किसी प्रकार का अपराध किया है और तुम सारे समाज को उसके लिए दंडित कर रहे हो। यह जो आवेश आता है परशुराम में, यह बहुत बड़ा रोग है। और वे कहते हैं मैंने 36 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया है। वे अपनी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा अपनी निंदा कर रहे हैं कि तुम निर्विचार निरपराधियों को मार करके पृथ्वी को शून्य कर दो, यह तुम्हारे लिए कीर्ति की बात है या अपकीर्ति की बात है। यह बहुत बड़ा रोग परशुराम में घुसा हुआ है। तो जब देखते हैं प्रभु अभी तो अब रोग का इलाज मेरे पास नहीं है, तो वे लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। लक्ष्मण जी संकेत समझ लेते हैं, अद्भुत हैं लक्ष्मण जी, प्रभु का मनोभाव समझ लेते हैं। और इसके बाद जो भूमिका शुरू होती है, जो कहा प्रभु ने तो इतना कह दिया आपका ही कोई एक दास होगा इस धनुष को तोड़ने वाला, पर जिस समय नहीं समझ सके परशुराम जी और कहते हैं कि वह बाहर आ जाए, नहीं तो सब राजाओं को मैं खत्म कर दूंगा। प्रभु देखते हैं लक्ष्मण जी की ओर और लक्ष्मण जी फिर उठ करके कहते हैं, वह जो कहते हैं वही मानो इलाज है, मानो इलाज चल रहा है। कहते हैं हमने तो बचपन में बहुत सी ऐसी धनुहियां तोड़ दी मुनिराज, पर कभू असर कभू न कीन गोसाई, पर कभी तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। अब इसी पर ममता किस लिए है, माने इस धनु पर ममता के ही हेतु, इस पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है। आप धनुष के टूटने के कारण खेद व्यक्त कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं समझता। यदि आपको धनुष के प्रति इतना ममत्व था तो आपको पहले ही कह देना था, आ जाना था। महाराष्ट्र जनक ने आज ही तो यह डंका तो नहीं बजाया, सब जगह जो उन्होंने घोषणा की, कब की घोषणा हो चुकी है, आपने भी वह घोषणा सुनी होगी कि जो भगवान शिव के धनुष को उठा करके तोड़ देगा उससे मैं अपनी कन्या का ब्याह करूंगा। यह बात तो वे कब से प्रचारित कर रहे हैं, मुनादी पिटवा रहे हैं, आपने तब सुना होगा, तब तो आप नहीं आए। और आज जब धनुष टूट गया है आकर के कहते हैं कि यह धनुष क्यों टूट गया है, आपको रक्षा करनी थी तो पहले रक्षा करनी थी, भगवान शंकर के प्रति आपकी इतनी भक्ति है उसे पहले कहना था, या राजा जनक से वह धनुष आपको ले लेना था? कितनी बात कहते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि आपका ममत्व ही आपको दुख दे रहा है, तो इसलिए आप ममता की चिकित्सा कीजिए। माने यह लक्ष्मण जी का व्यंग, ये सारे व्यंग्यमान लगते जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ऋषि अत्यंत क्रोधित भी होते जाते हैं। माने थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, और फिर भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, और क्या कहते हैं, ऋष तनु जरे होई बलहारी। यही चिकित्सा है कि ऋष के कारण, क्रोध के कारण परशुराम जी का सारा शरीर जल रहा है और उनका बल क्षीण होता जा रहा है। और कैसे होता जा रहा है? निर्भय वाणी सुन करके। जो परशुराम जी के लिए चिकित्सा आवश्यक थी वह निर्भीक वाणी की आवश्यकता थी। परशुराम जी ने जीवन में कभी किसी दूसरे व्यक्ति की निर्भीक वाणी सुनी नहीं, जिसको भी देखा वही थर थर कांप रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैरों पर लौट रहा है। और लक्ष्मण जी ही ऐसे हैं जो चिकित्सा करना जानते हैं, वे तनिक भी नहीं डरे, बल्कि वे तो हरदम जिस समय कहा बेगी करो आंखें निकिन ओटा, इस लड़के को दूर करो, आंखों से दूर कर दो, ओट कर दो, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुंदो नयन कतो, आप मुंद लीजिए ना नयन, मुझे कहां दूर करने की जरूरत है, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं नहीं दुखूंगा, यदि मेरे दिखने से ही आपको रिस होता है, आंखें बंद कर लीजिए। यही चिकित्सा है, ये जो हमने कहा ना चिकित्सा यही तो होती है। आदमी जब कमजोर पड़ जाता है, आपने देखा होगा, माने जैसे मोहल्ले में दो की लड़ाई हो गई, दो गुंडों की, जब वो कमजोर पड़ जाता है तो कहते इसको हटा दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। मारना नहीं जा, जानता है वो कमजोर हो गया है, वो उससे भिड़ नहीं सकता है, परंतु लोग खड़े हैं, इसे कहते उसको हटा दो, नहीं तो मैं भिड़ जाऊंगा, पर भिड़ नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। परशुराम भी कहते इसको हटाओ, नहीं तो मैं फरसा चलाऊंगा, चला ना फरसा, वही तो लक्ष्मण जी कह रहे चलाओ, पर चल नहीं रहा है। यही चिकित्सा है। तो लक्ष्मण जी अद्भुत कुशल चिकित्सक हैं। तो हमने देखा आज तीनों की चिकित्सा, सुग्रीव की चिकित्सा करते हैं पद्धति अलग है, राजा जनक की चिकित्सा करते हैं पद्धति अलग है, और फिर यहाँ पर परशुराम जी की चिकित्सा करते हैं, और परशुराम जी चिकित्सा से स्वस्थ हो जाते हैं, और जब विदा लेते हैं तो केवल क्या भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, क्या उन्हीं से विदा लेते हैं? कहते हैं अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, मैंने बहुत ऐसी अनुचित बातें कह दी, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। श्री राम को कोई क्षमा मंदिर कहे तो बात समझ में आती है, पर लक्ष्मण जी भी क्षमा मंदिर है। जब प्रमाण पत्र देते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्षमा मंदिर का, तो समझ लीजिए इससे बढ़कर के प्रमाण पत्र और हो नहीं सकता है। तो ऐसे ये लक्ष्मण जी हैं जिनका चरित्र तेजस्विता, मानो ऐसा एक क्रोध जिसको हम कहेंगे राइचुअस इंडिग्नेशन, ऐसे क्रोध की सृष्टि करता है अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, और किसके लिए, यह जो प्रभु की विमल कीर्ति रूपी पताका है उस पताका को फहराने के लिए वे दंड के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आइए दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।